ऋषि युग की झलक झांकी भाग -1। हमारे आत्मीय स्वजनों, परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माताजी अपने परिजनों को प्रेम आत्मीयता के साथ दिव्य पोषण देते रहे हैं।
सबके व्यक्तित्व में उत्कृष्टता, भावनाओं एवं विचारों में श्रेष्ठता के दिव्य तत्व भरते रहे हैं। सबके दुखों कष्टों में वे हमेशा साथ रहकर धीरज एवं हिम्मत बढ़ाते रहे हैं।
अब वे सभी परिजन अपनी अनुभूतियों को, अपनी गुरुसत्ता के दिव्य अनुदानों को अभिव्यक्त कर रहे हैं।
इस जन्म शताब्दी की विशिष्ट वेला में वे किसी भी प्रकार उनके अनुदानों का ऋण उतारने की बड़ी कसक लिए हुए हैं।
आप सबकी श्रद्धा भावना, समर्पण साधना और अधिक बड़े इसी भाव से उनके दिव्य संस्मरणों को ऋषि युग की झलक झांकी नाम की इस पुस्तक में आप सबके सम्मुख लाया जा रहा है। निश्चित ही यह पुस्तक संग्रहणीय होगी। यह हर कठिन अवसर पर प्रेरणा प्रकाश देने वाली एवं जीवन जीने की कला समझने में बहुत उपयोगी सिद्ध होगी, ऐसा हमारा सुनिश्चित विश्वास है। हमारे विराट गायत्री परिवार के परिजनों के अनेकानेक ऐसे संस्मरण केवल उनके चित्त की स्मृतियों में ही भरे पड़े हैं। आशा है हमारे नैष्ठिक परिजन अपने संपर्क के पुराने कार्यकर्ताओं से ऐसे संस्मरण कलमबद्ध करवाएं या ऑडियो वीडियो सीडी बनाकर यहां भेजते रहें, ताकि आगे भी इसी पुस्तक के अन्य अनेकों खंड प्रकाशित होते रह सकें। पूज्यवर के दिव्य, आकर्षक, चुंबकीय व्यक्तित्व के अन्य अनेकों प्रसंग इसी प्रकार उल्लिखित किए जाने में वे अपना सहयोग प्रदान करेंगे, ऐसी हमारी आकांक्षा है। आप सबके सर्वांगीण उत्कर्ष की स्नेहपूर्ण शुभकामनाएं। अनुक्रमणिका भूमिका -51, ममता की मूर्ति प्यार के सागर -72, यह तो गूंगे का गुड़ है -28.3, गुरु सत्ता के साथ मनोविनोद के क्षण -121.4, हम 5 शरीरों से काम कर रहे हैं -133.5, साक्षात शिव स्वरूप -158.6, वे तंत्र के भी मर्मज्ञ थे -178.7, भविष्य दृष्टा हमारे गुरुदेव -184.8, बच्चों हमारा जन्म जन्मांतरों का साथ है -198.9, लाखों का जीवन बदला -212.10, बेटा हम सदा तुम्हारे साथ रहेंगे -219.11, जिसने जो मांगा वो पाया -228.12, भागीदारी की नफे में रहे -247.13, उनकी चेतना आज भी सक्रिय है -251। भूमिका यदा यदा ही धर्मस्य की प्रतिज्ञा निभाने वाले परम सृष्टा जब धरती पर अवतरित होते हैं तब स्वयं को इतना गुप्त रखते हैं कि उनके सान्निध्य में निरंतर कार्यरत व्यक्ति भी उन्हें ठीक से नहीं जान पाते।
कभी झलक भी मिलती है तब उन्हें एकटक देखते हुए यह सोचते हैं कि क्या ये सचमुच ईश्वर रूप है। उनके इस प्रकार सोचते ही मायापति अपनी माया से उन्हें आच्छादित कर देते हैं व फिर अति सामान्य की तरह सबके साथ वही सामान्य जीवन क्रम चलता रहता है। उन्हें भान ही नहीं हो पाता कि वे उस परम सत्ता के साथ उनके अंग अवयव बनकर जीवन जी रहे हैं।
यही तो है लीलापति की लीला। सोई जानई जेही देहु जनाई की उक्ति पुनर्तः तब चरितार्थ होती है जब उनकी असीम अनुकंपा से कोई कोई भक्त उन्हें जान पाता है। जानने के बाद भी उनकी आकांक्षा के अनुरूप साथ चलने की सामर्थ्य जुटाने हेतु भी उनकी कृपा की आवश्यकता होती है। तभी तो अर्जुन जैसे समर्पित अभिन्न कृष्ण सखा को भी कहना पड़ गया कि कार्पण्य दोषों कृत स्वभाव,
कायरता के दोष से मेरा स्वभाव आहत हो गया है, धर्म के विषय में मैं मोहित चित हो गया हूँ, अतः मैं आपसे पूछता हूँ जिस कार्य से मेरा निश्चित भला हो वही मार्ग बताइए। तब हम सामान्य जनों की क्या बिसात की उनकी कृपा के बिना उन्हें पहचान सके, उनकी राह चल सकें। प्रस्तुत पुस्तक में ऐसे ही स्वजनों के गुरुसत्ता के साथ जुड़े प्रसंगों को प्रकाश में लाने का प्रयास किया गया है, जिससे भावी पीढ़ी भी पिछली पीढ़ी के कार्यों को जाने व समझे,
अपनी समस्याओं के निदान हेतु उससे मार्गदर्शन प्राप्त कर सके व अपनी श्रद्धा और समर्पण को निरंतर बढ़ाती रह सके। साथ ही पूज्यवर के साथी, सहचर, सहयोगी, कदम से कदम मिलाकर चलने वाले, हर आज्ञा पर खड़े रहने वाले, निर्देशों को आंख मूंद कर मानने वाले, स्वयं असीम कष्ट सहकर भी कार्य पूर्ण कर संतोष प्राप्त कर उछलने कूदने वाले बिंदु भी अपनी अनुभूति को तरोताजा कर रोमांचित हो सकें। कभी पूज्य गुरुदेव ने कहा था कि बेटा हमने इतने अनुदान बांटे हैं कि यदि उन सबका लेखा जोखा रखा जाए तो 18 महापुराण भी कम पड़ जाएंगे।
वे परिजन जिन्होंने निज ननों से उन्हें प्रत्यक्ष में भले ही न देखा हो किंतु उनके विचारों पर, उनके आदर्शों पर मर मिटने को तैयार हो गए व उनकी योजना को पूरा करने हेतु अपना जीवन समर्पित कर दिया, जो अपने सांसारिक कार्यों से समय, साधन, श्रम बचा बचा कर गुरु कार्यों में होम रहे हैं, मिशन के विस्तार में अपना सहयोग देकर तन मन से युग निर्माण के आकांक्षी हैं।
वे सभी स्वजन बिंदु प्रस्तुत पुस्तक से प्रेरणा, प्रकाश, मार्गदर्शन, उत्साह, उमंग एवं कार्यपथ पर बढ़ने का साहस प्राप्त कर सकेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है।
इन यादों में वह शक्ति है कि हर परिजन अपने कर्तृत्व के अनुसार यह अनुभव कर सकेगा कि हमारी समर्थ गुरुसत्ता ने जो असीम प्यार दुलार स्नेह सम्मान ममता करुणा कृपा आशीर्वाद स्थूल रूप में अपने साथियों पर उड़ेला है उसे अपने सूक्ष्म रूप में आज भी उड़ेल रहे हैं।
हमारी श्रद्धा निष्ठा जितनी सशक्त एवं सार्थक बनकर सक्रियता में परिवर्तित होगी उतना ही हम उनकी कृपा के अधिकारी बन सकेंगे। ऋषि सत्ता से जुड़े संस्मरणों को पहले भी प्रकाशित किया जाता रहा है।
स्मारिकाओं में प्रज्ञा अभियान पाक्षिक में अखंड ज्योति पत्रिका में एवं वाण्मय में भी कुछ विशिष्ट संस्मरण छपते रहे हैं किंतु जन्मशताब्दी की इस महत्वपूर्ण वेला में परिजनों के संस्मरणों को विशेष तौर पर इकट्ठा किया जा रहा है।
आने वाले समय में एक श्रृंखलाबद्ध रूप से इस विषय पर भी पुस्तकें निकाली जाएंगी। यह पुस्तक उसका एक नमूना भर है।
अतः जागृत परिजनों से अनुरोध है कि वे इस पुस्तक से प्रेरणा लेकर उन परिजनों के संस्मरणों को जो पूज्य गुरुदेव के सहयोगी रहे हैं और बहुमूल्य यादें अपने अंदर छिपाए बैठे हैं लिखित रूप में अथवा ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग के रूप में जैसे भी संभव हो सके शांतिकुंज भेजे ताकि हम इस श्रृंखला को आगे बढ़ा सकें।
महिला मंडल शांतिकुंज 1 ममता की मूर्ति प्यार के सागर पूज्य गुरुदेव एवं वंदनीय माताजी प्यार आत्मीयता दया करुणा ममता की साक्षात प्रतिमूर्ति थे।
उन्होंने इस मिशन को स्नेह वात्सल्य की नींव पर खड़ा किया है। प्रत्येक परिजन यही महसूस करता है कि उन्होंने मुझ पर इतना ममत्व लुटाया है कि सगे माँ बाप भी क्या लुटाते होंगे। उन्होंने युग निर्माण योजना के इस संगठन को गायत्री परिवार के नाम से भी संबोधित किया है। भाव यह है कि हम सब एक ही परिवार के सदस्य हैं।
वसुधैव कुटुंबकम के मर्म को उन्होंने अपने जीवन से समझाने का प्रयास किया है।
वे कहते हैं मैं अधूरा प्यार करना नहीं जानता। मैंने जिससे भी प्यार किया है पूरा प्यार किया है। एक जगह पर वे लिखते हैं कोई कहे कि तुम्हारे गुरु से बड़ा कोई ज्ञानी है तो मान लेना। यदि कोई कहे कि तुम्हारे गुरु से बड़ा कोई दूसरा तपस्वी और सिद्ध समर्थ है तो भी मान लेना। पर यदि कोई कहे कि तुम्हारे गुरु से ज्यादा प्यार करने वाला कोई है तो बेटा
कभी मत मानना।
मेरा प्यार तुम लोगों के साथ हमेशा रहेगा मेरे शरीर के रहने पर और शरीर के न रहने के बाद भी। वे कहते थे मैंने अपने बच्चों से बहुत प्यार किया है। सन 1971 के विदाई उद्बोधन में वे कहते हैं प्यार
प्यार प्यार
यही हमारा मंत्र है। आत्मीयता ममता स्नेह और श्रद्धा यही हमारी उपासना है। आज भी यह मिशन उनके इसी सूत्र के आधार पर आगे बढ़ रहा है।
फिर भी उनका स्थूल स्नेह जिन परिजनों ने पाया है उसका आनंद तो वे ही जानते हैं।
वास्तव में ऋषि सत्ता ने अपने बच्चों पर जो स्नेह लुटाया वह अतुलनीय अद्वितीय असीम है। परिजनों को लिखे गए उनके पत्रों में ही इतनी आत्मीयता इतना प्यार झलकता है कि उन्हें पढ़ते समय लगता है जैसे वे सामने खड़े होकर हमें दुलार रहे हैं तो जब प्रत्यक्ष में मिलते होंगे तो कितना वात्सल्य कितना ममत्व लुटाते होंगे इसकी कोई सहज ही कल्पना कर सकता है। यहाँ हम परिजनों के कुछ संस्मरण व उन्हें लिखे पत्रों के कुछ छोटे छोटे अंश प्रकाशित कर रहे हैं जिनसे उनके अनोखे स्नेह और वात्सल्य की झलक मिलती है। गुरुजी माताजी ने हम सबको अपना अंग अवयव कहा ही नहीं अपितु अपने पत्रों में किस प्रकार व्यक्त किया है जाने समझें।
वे संबोधन स्वरूप हमारे आत्मस्वरूप शब्द का प्रयोग करते थे।
कितनी गहरी भावनाएं छिपी हैं इस संबोधन में।
एकत्व का भाव पढ़ने वाले की क्या मनोदशा होती होगी मन कितना आह्लादित हो जाता होगा
सहज ही कल्पना कर सकते हैं।
सन 1971 में पूज्य गुरुदेव साधना हेतु हिमालय चले गए थे।
उन दिनों में 30-10 को अपने एक निकटस्थ परिजन को माताजी के द्वारा लिखे गए पत्र के अंश कुछ इस प्रकार हैं।
अत्यधिक व्यस्तता के कारण उत्तर जल्दी नहीं लिख पाई
पर ऐसा कोई दिन नहीं गया होगा जिस दिन तुम दोनों को स्मरण न किया हो। तुम दोनों हमारी आंखों की पुतलियों की तरह हो।
हमारा वात्सल्य तुम्हारे लिए हर घड़ी उमड़ता रहता है। तुम्हारी हर परिस्थिति का पूज्य आचार्य जी को पता है ऐसा ही मानना चाहिए
भले ही शारीरिक दृष्टि से वे कितने ही सघन एकांत में क्यों न हो।
एक अन्य परिजन को माताजी 2-5 को लिखे गए एक पत्र में लिखती हैं।
...... आप हमें अपने सगे बच्चों की तरह याद आते रहते हैं। अपनी अंतःकरण की भावनाएं अपना स्नेह किन शब्दों में व्यक्त करें।
9-2 को एक परिजन को वे लिखती हैं। ......
आप बच्चों के अंतरंग जीवन में घुले मिले रहने से कितनी प्रसन्नता होती है इसे शब्दों में कैसे व्यक्त करें। आप हमारे सगे बेटे की तरह हैं। यह संबंध अनेकों जन्मों की साधना द्वारा प्रगाढ़ किए हैं। आप अनेक जन्मांतरों तक हमारे स्नेह सूत्र में ऐसे ही बंधे रहेंगे। हमारा वात्सल्य वर्षा की तरह आप दोनों पर बच्चों पर निरंतर बरसता रहेगा। 29-3 के इस पत्र के शब्दों की गहराई नापी नहीं जा सकती।
आपको परमात्मा ने श्रद्धा की साक्षात प्रतिमूर्ति बनाकर भेजा है।
किसी भी माँ का अपनी नन्ही संतान के लिए जिस तरह हृदय उमड़ता रहता है, उसी तरह आपको सदैव अपने हृदय से लगाए रखने का मन बना रहता है। आप बच्चे हमें प्राणों से भी प्रिय लगते हैं।
प्रस्तुत पत्र में पूज्य गुरुदेव का स्नेह और सतत संरक्षण का आश्वासन समझने योग्य है। हमारे आत्मस्वरूप आपका और बेटी श्रीपर्णा का पत्र मिला, होली का गुलाल भी।
पत्र पढ़ते समय लगता है आप दोनों सामने ही बैठे हैं। होली का हमारा आशीर्वाद और माताजी का स्नेह आप चारों को इस पत्र के साथ भेज रहे हैं। हम लोग भविष्य में कहीं भी क्यों न रहें, आप लोगों को कभी अकेलापन अनुभव न होने देंगे। आप लोग अपने घर, आंगन, छत और कमरे में हमें बैठा टहलता अनुभव करते रहेंगे।
4-9 को पूज्य गुरुदेव एक परिजन को लिखते हैं, हमारे आत्मस्वरूप आपका पत्र मिला।
कई बार पढ़ा, आपकी भावनाएं उमड़ उमड़ कर हम तक तो सदा ही पहुंचती रहती हैं। पर जब पत्र आता है तो उनमें ज्वार सा आ जाता है।
पत्र लिखते समय लगता है तुम लोग सामने ही बैठे हो। 17-8 को पूज्य गुरुदेव एक बहन को लिखते हैं, ।... तुम हमारी बेटी की तरह हो।
हमसे कुछ न कहो तो भी क्या पिता अपनी संतान के सुख की चिंता नहीं किया करते।
तुम्हारे लिए जो भी आवश्यक होगा हम सदैव करते रहेंगे। 28-8 को माताजी एक बहन को पत्र में लिखती हैं, ।...
कोख के बच्चे की सास संभाल किस तरह की जाती है वह एक माँ ही जानती है। अभी तक जिस तरह तुम्हारे हित का संरक्षण करते रहे हैं, आगे भी उसी तरह करते रहेंगे। ऐसे ही 20-5 के इस पत्र में एक परिजन की श्रद्धा निष्ठा को प्रोत्साहित करते हुए वे लिखती हैं, आपकी श्रद्धा हमारा जीवन और प्राण है।
यह निष्ठाएं ही इस देश को नई सामर्थ्य प्रदान करेंगी।
3-8 के इस पत्र के शब्दों को देखें,
।... तुम्हारी साधना निष्ठा का हृदय से सम्मान करती हूँ। आने वाली पीढ़ी के लिए यह संस्कार और निष्ठा वरदान बनेगी। उसके लिए कोटि कोटि आत्माएं तुम्हारा उपकार मानेंगी।
वहीं इसी संबंध में 8-9 में पूज्य गुरुदेव एक परिजन को लिखते हैं,
नव निर्माण की दिशाधारा को साकार बनाने में जिस श्रद्धा और तत्परता के साथ संलग्न है, उसे देखकर हमारा रोम रोम पुलकित हो उठता है।
आप जैसे कर्मठ स्वजनों के बलबूते पर ही हमने इतने रंगीन सपनों को साकार करने की आशा बांधी है।
14-10 को एक अन्य परिजन को वे लिखते हैं, ।... पुण्य पर्व दशहरे पर भेजी तुम्हारी हार्दिक शुभकामनाएं मिली।
तुम्हारी यह श्रद्धा हमें कितनी शक्ति देती है उसे हम शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते।
तुम दोनों तो हमारे प्राण हो, हम अंतःकरण से सदैव ही तुम्हारे साथ जुड़े रहेंगे।
इस पुण्य पर्व पर हम अपनी हार्दिक शुभकामनाएं और आशीर्वाद भेज रहे हैं। ऐसे असंख्यों पत्र हैं।
प्यार, आत्मीयता एवं अपने कार्यों का श्रेय अपने शिष्यों को देने की कला तो कोई गुरुजी माताजी से ही सीखे। प्रत्यक्षता, अपने व्यवहार द्वारा स्नेह, आत्मीयता एवं वात्सल्य लुटाता उनका स्वरूप दर्शाते कुछ संस्मरण भी यहाँ प्रस्तुत हैं। स्वयं रेत पर बैठ जाते, डॉक्टर कमल कुमार दत्ता, शांति कुंज। गुरुजी माताजी का प्यार असाधारण, अलौकिक था।
मैं उनसे क्या जुड़ा, उन्होंने मुझे जोड़ लिया।
मेरा तो बस प्यार का अधिकार था।
कुछ ऐसा सोच ली कि जैसे अचानक ही किसी लड़की या लड़की को प्यार हो जाता है।
उनका अपनापन, प्यार भरी बातें, प्रेम से खिलाना, इसी सब ने मुझे जोड़ लिया। गुरुजी शाम को जब घूमने जाते तो मथुरा में यमुना किनारे हमें भी साथ ले जाते। वह रेत पर अपना तौलिया बिछाकर कहते थे, बैठो, और स्वयं रेत पर बैठ जाते थे। उनका यह प्यार पागल बना देने वाला प्यार था। मैं उनके साहित्य और अखंड ज्योति का भक्त बन गया। नयन नयन से हृदय हृदय से करुणा भरी विदाई। श्रीमती यशोदा शर्मा, शांति कुंज।
कन्या शिविर की विदाई के वह पल आज भी वैसे ही सजीव हैं।
हम रो रहे थे, आंसू थम नहीं रहे थे।
स्वाभाविक है कि रोते समय नाक भी बहने लगती है। परम पूज्य गुरुदेव समझाते भी जा रहे थे कि बेटा, फिर भी आते रहना, और अपने हाथों से आंसू भी पोंछते जा रहे थे। मेरी आंखों से आंसू बहकर गले तक जा रहे थे और नाक भी बह रही थी। गुरुदेव ने अपने हाथों से आंसू तो पोंछे ही, साथ में मेरी नाक भी पोंछी। उनके हाथ में कोई रुमाल नहीं था, फिर भी उन्हें नाक पोंछने में भी कोई संकोच नहीं हुआ।
ऐसा प्यार, ऐसा दुलार भला कैसे भुलाया जा सकता है। माताजी शिविर समाप्त होने पर विदाई गीत गाया करती थी, नयन नयन से हृदय हृदय से करुणा भरी विदाई। उनके स्वरों में इतना दर्द भरा रहता था कि हम सब सुबक सुबक कर रो देते थे।
ऐसा लगता था जैसे माँ के घर से विदा हो रहे हैं। उनके आंचल से बिछुड़ने का किसी का मन नहीं करता था।
कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो शांतिकुंज से विदा होते समय रोया न हो। ऐसा अलौकिक प्यार था गुरुजी माताजी का।
मैं हूँ इसकी दादी,
श्रीमती कृष्णा उपाध्याय, शांतिकुंज। मेरे दूसरे बेटे सुनील का जन्म मथुरा में हुआ। वंदनिया माताजी मुझे लेकर अस्पताल गईं। वहां मेरे साथ ही थी। बच्चे के जन्म के बाद जब नर्स लेबर रूम से मुझे व बच्चे को बाहर लेकर आई, तब उसने आवाज लगाई, इसकी दादी कौन है? माताजी ने झट से कहा, मैं हूँ इसकी दादी। नर्स बोली, लड़का हुआ है, खाली हाथ नहीं दूंगी। कौन खाली हाथ मांग रहा है? मैं तो खाली हाथ लूंगी भी नहीं। और माताजी ने सबको मनपसंद न्योछावर देकर बालक को गोद में ले लिया।
स्वयं जगत जननी के हाथ से न्योछावर पाकर पता नहीं न्योछावर पाने वालों ने अपने भाग्य को सराहा या नहीं,
किंतु मेरी आंखों में उस समय कृतज्ञता के आंसू थे।
मैंने अपने व अपने बच्चे के भाग्य की सराहना की जाने किस पुण्य से यह शुभ घड़ी मिली जो मेरे बच्चे को स्वयं जगन्माता अपनी गोद में खिला रही है।
उसके बाद भी वे सुबह शाम दोनों समय दूध लेकर स्वयं रिक्शे से अस्पताल आती, मुझे और बच्चे को दूध पिलाकर हम दोनों को संभाल कर जाती और बार बार कहती, छोरी
तू दूध पीने के लिए संकोच मत करना,
जितना पियोगी उतना दूध बढ़ा दूंगी, बिल्कुल भी परेशान मत होना। तपोभूमि आने के बाद भी घियामंडी से दूध भेजती व प्रसूता को ही पिलाने का निर्देश देती।
इस प्यार में कायल होकर ही बालक उनके अपने हुए।
इतना बड़ा संगठन इसी प्यार के सहारे उन्होंने विनिर्मित किया। आज भी सोचती हूँ तो लगता है निश्चित ही हमारी कोई पूर्व जन्म की तपस्या होगी जिससे हमें ऐसे माता पिता मिले।
उन्होंने बहुत बहुत प्यार दिया। जब भी उन पलों की याद आती है तो आंखें सजल हो जाती हैं। यह मेरी बेटी नहीं बेटा है,
श्रीमती सावित्री गुप्ता, शांतिकुंज। अखंड ज्योति पत्रिका के माध्यम से हम लोग पूज्य गुरुदेव से जुड़े। यह पत्रिका हमारे यहाँ हमारा धोबी लाकर देता था। लेख बहुत पसंद आए। पत्रिका में पता लिखा था सो मथुरा पत्र डाल दिया। तत्काल जवाब आ गया। यह सिलसिला चलता रहा। हर हफ्ते पूज्यवर के पत्र आ जाते, जवाब हम भी लिखते रहते। एक बार पूज्यवर को नागपुर आना था, सो उन्होंने लिखा, सावित्री मैं नागपुर आ रहा हूँ, तू भी आ जाना।
जिस बोगी में मालाएं लटकी हों उसी में चढ़ जाना,
वहां हम मिल जाएंगे। चूंकि अभी तक पूज्यवर के दर्शन नहीं हुए थे अतः असमंजस था।
मेरी बेटी बेबी तब नागपुर में पढ़ती थी, बेबी से भी मुलाकात हो जाएगी, सोचकर नरखेड़ घर से चली और माला वाली बोगी में चढ़ गई।
चढ़ते ही पूज्यवर ने आगे बढ़कर कहा, सावित्री आ गई तू, धोबी तरुणकर कैसा है? सुनकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ।
हम कभी पहले मिले नहीं और नाम लेकर पुकार रहे हैं।
साथ ही पत्रिका देने वाले का भी नाम मालूम है।
उसके उपस्थित न होने पर भी उनका हाल जानना चाहते हैं। कितने प्रश्न मन में उठे और उनकी सहजता ने हृदय को छू लिया। वह जैसे परिवार में पिता के साथ बातचीत में कुछ भान नहीं होता,
उसी प्रकार प्रथम परिचय में ही बिना किसी बनावट के मैं उनके साथ घुल मिल गई।
उन्होंने अपने पास में बिठाया,
पीठ पर हाथ फेरा व कुशल क्षेम पूछी। इसी प्रकार बातचीत करते नागपुर पहुंच गए। नागपुर में श्री शरद पारधी जी के यहाँ रुके। उनके पिता श्री मोरोपंत पारधी मराठी अखंड ज्योति पत्रिका के संपादक थे, इसलिए गुरुदेव जब भी नागपुर आते उनके यहाँ अवश्य जाते।
हम लोग भी गुरुदेव के साथ शरद जी के घर गए।
वहाँ बहुत लोग थे। पूज्यवर के स्वागत के बाद सबका नाश्ता हुआ, उसके बाद गोष्ठी हुई।
गोष्ठी में उन्होंने मुझे पास में बिठाया और सभी को संबोधित कर कहा, यह मेरी बेटी नहीं बेटा है,
बहुत काम करेगी। वहां से गोष्ठी लेकर वे महासमुंद के हजार कुंडीय यज्ञ हेतु निकले। उन्होंने मुझे पूछा, महासमुंद चलेगी क्या? मैंने कहा, गुरुदेव
मैं घर में कहकर नहीं आई हूँ इसलिए नहीं जा सकती। पूज्यवर ने कहा, ठीक है मथुरा आना, और महासमुंद के लिए रवाना हो गए।
जब मैं शांतिकुंज आ गई तब तो उनका प्यार आशीर्वाद व संरक्षण पाकर हम निहाल ही हो गए। मेरे लिए टिफिन जरूर भिजवाती थी। श्री अशोक दास, शांतिकुंज। माताजी प्यार लुटाने के भी अवसर खोजती रहती थी।
अक्सर ही कुछ न कुछ अपने हाथों से बना कर खिलाती,
कभी बाजरे की रोटी कभी हलवा। एक दिन बोली, लल्लू आज मैं तुम लोगों को गरीबों का हलवा बनाकर खिलाती हूँ। उन्होंने बेसन का नमकीन हलवा बनाकर खिलाया, मुझे बहुत ही पसंद आया। घर आकर पत्नी को बताया।
पत्नी ने चौके में रहने वाली बहनों से उसकी विधि पूछी तो माताजी ने स्वयं उसे उसकी विधि बताई। इतना ही नहीं, जब भी माताजी की रसोई में वह बनता वह मेरे लिए टिफिन जरूर भिजवाती थी। उन्हें सबका ध्यान रहता था किसको क्या पसंद है।
जब जिसकी पसंद की जो चीज बनती वह उसके लिए थोड़ा सा बचाकर जरूर रखती थी।
मैंने तुझे नमकीन हलवा सिखाने के लिए बुलाया है,
श्रीमती मणिदास, शांतिकुंज। एक दिन दास जी माताजी के पास नमकीन हलुआ खाकर आए और बोले कि बहुत स्वादिष्ट था, तुम उसे जरूर सीखना।
मैंने चौके की एक बहन से उसकी विधि पूछी। उसने मुझे बताया कि बेसन का घोल बनाकर उसे बनाते हैं। उसने माताजी से भी कह दिया। एक दिन सुबह सुबह 4:30 बजे माताजी का संदेश आया कि मुझे माताजी ने बुलाया है। मैं बहुत घबराई कि इतनी सुबह माताजी ने क्यों बुलाया है, मुझसे कोई गलती हो गई है क्या। मैं डरते डरते माताजी के पास पहुंची। माताजी हंसकर बोली, डरती क्यों है, मैंने तुझे नमकीन हलवा सिखाने के लिए बुलाया है। मैंने देखा रसोई घर में गैस चूल्हे पर बड़ा सा भगोना रखा है।
माताजी ने बेसन घोला और फिर उसे बनाने लगी। मैं माताजी से बोली, माताजी मैं बनाती हूँ। माताजी बोली, ना लाली तू नहीं कर पाएगी। थोड़ी देर में माताजी ने उस पर ढक्कन ढक दिया और बोली, अब इसे एक तरफ से ढक्कन हटाकर 45 मिनट चलाना है। मैं फिर बोली, लाए माताजी मैं करती हूँ। इस पर माताजी पुनः बोली, नहीं तेरे हाथ में फफोले पड़ जाएंगे। मैं माँ हूँ ना बेटा,
मुझे पता है,
तू देख मैं कैसे बनाती हूँ। मैंने घड़ी देखी, माताजी लगातार 45 मिनट तक उसे चलाती रही। मैं भाव विभोर होकर माताजी को देखती रह गई। जब तक माताजी थी तब तक जब कभी भी वह हलवा बनता, माताजी टिफिन में भरकर दास जी के लिए जरूर भेजती थी।
चक्कर कड़ी खा।
वे शांतिकुंज में रहने वाले हम लोगों पर ही नहीं अपितु शिविर में आए हुए भाई बहनों पर भी ऐसा ही प्यार लुटाती थी। एक बार एक शिविरार्थी भाई ने माताजी से कहा, माताजी आज मैं जा रहा हूँ, मैं एक महीने रहा पर इस बार कड़ी खाने को नहीं मिली। माताजी ने कहा, अच्छा बेटा बैठ। फिर उन्होंने चौके से एक बहन को बुलाया और उन सज्जन के लिए कड़ी बनाने को कहा।
वे सज्जन सकुचाए और मना करने लगे, पर माताजी ने उन्हें अपने सामने भोजन कराया।
बोली, बेटा चक्कर कड़ी खा। इतना ही नहीं रास्ते के लिए भोजन भी बांध कर दिया। लो बाजरे की टिक्की खाओ। उन दिनों शांतिकुंज में थोड़े से ही परिवार रहते थे।
गुरुजी माताजी के पास आना जाना बातचीत करना भी सहज था। माताजी के पास तो कोई भी कभी भी चला जाता था।
एक दिन सावित्री जीजी ने माताजी से कहा, माताजी बाजरे की टिक्की खाए बहुत दिन हो गए। माताजी ने तुरंत स्टोव वाले भाई से पूछवाया, बाजरा आ गया है क्या। वह बोला, माताजी अभी नहीं आया है। माताजी ने उसे कहा, जैसे ही आए मुझे बताना। अगले दिन सुबह सुबह 8:00 बजे ही माताजी ने बुलवा भेजा और बोली, लो बाजरे की टिक्की खाओ, और साथ में 2-4 बांध कर भी दे दी।
शांतिकुंज की बहुत सी बहनें माताजी के साथ बिताए उन पलों को अक्सर याद करते हुए बताती हैं। प्रारंभ के दिनों में आसपास का क्षेत्र विकसित नहीं था।
छोटा छोटा सामान लेने के लिए भी हरिद्वार जाना पड़ता था। माताजी सबके सामान की सूची तैयार करवा लेती और 1-2 लोगों को भेजकर सबका सामान मंगवा लेती, फिर स्वयं ही सबको वितरित करती। यूं तो गुरुजी माताजी के साथ बिताया हर क्षण त्योहार जैसा ही था,
पर त्योहारों का तो अपना अलग ही मजा था।
माताजी गीत गवाती, ढोलक बजवाती, सबको हंसाती भी रहती।
त्योहार के दिनों में माताजी के पास सबका भोजन होता था।
माताजी कई प्रकार के पकवान बनाती थी। हम सब शांतिकुंज की बहनें माताजी के पास पकवान बनवाने जाती थी। माताजी एक तरफ बैठती और लोई रोटी बेलने कचौड़ी भरने हेतु आटे का गोला बनाती जाती।
उनके काम में इतनी फुर्ती थी कि वे पूरे आटे के पेड़े बना देती और हम लोग सब मिलकर आधा भी नहीं बेल पाते थे। कभी कभी वह कहती, अच्छा तुम सब मिलकर लोई काटो मैं बेलती हूँ। हम लोग उसमें भी पिछड़ जाते थे। हम सब मिलकर लोई बनाते और माताजी सब बेलकर कहती, इतने लोग लोई बना रहे हो और मैं अकेली बेल रही हूँ फिर भी पिछड़ जा रहे हो। इतना प्यार माताजी ने दिया कि कभी लगा ही नहीं कि हम घर बार छोड़कर परिवार से दूर रह रहे हैं। हमारी बहू को मेहंदी तो लगा।
श्री महेंद्र शर्मा जी व मुक्ति दीदी शांतिकुंज।
महेंद्र शर्मा जी ने बताया, मुझे हरी मिर्च व धनिया की चटनी बहुत पसंद थी।
माताजी अक्सर मेरे लिए वह चटनी पिसवा कर रखती थी।
एक दिन मैं माताजी के पास किसी काम से गया। माताजी के पास एक कटोरी में कुछ हरा हरा सा रखा दिखाई दिया। मैंने सोचा चटनी रखी है। मैंने माताजी से पूछा, आज चटनी बनी है क्या। माताजी बोली, न लल्लू मेहंदी धरी है।
आज करवा चौथ है, ले थोड़ी मेहंदी मुक्ति के लिए भी ले जा, वो भी लगा लेगी। मैंने कहा, माताजी ये सब महिलाओं का काम है,
मैं नहीं करता। फिर मजाक में कहा, मेरे यहाँ 21वीं सदी नहीं आएगी माताजी कि ये सब महिलाओं के काम करता फिरूं मैं।
और मेहंदी ले जाकर दूंगा कहकर मैं मेहंदी लिए बिना ही नीचे आ गया। मुक्ति दीदी, कुछ समय बाद मैं किसी काम से गुरुजी के पास गई।
उन दिनों शांतिकुंज में थोड़े से ही लोग थे और काम खूब रहता था। हम लोग दिन भर काम में व्यस्त रहते थे।
गुरुजी ने मुझसे पूछा, मुक्ति तूने मेहंदी नहीं लगाई? मैंने कहा, गुरुजी समय नहीं मिला, अभी लगा लूंगी। गुरुजी बोले, महेंद्र को बता देना, उसकी भी सदी आएगी और जरूर आएगी। बेटा, तेरे घर में भी सदी आएगी।
मैंने सोचा, पता नहीं गुरुजी क्या कह रहे हैं। मैं माताजी के पास गई तो माताजी ने कहा, मुझे पता है तैने मेहंदी नहीं लगाई होगी।
महेंद्र को ले जाने को बोला तो वो यहीं छोड़ गया। फिर निर्मला भाभी माताजी की बहू को बोली, निर्मला, हमारी बहू को मेहंदी तो लगा। मैंने कहा, माताजी अब समय ही कहाँ है,
पूजा होने वाली है और मुझे पूजा का सामान भी लाना है। माताजी बोली, अरे पूजा में अभी आधा घंटा है, तू मेहंदी लगा फिर या ही संग बैठ के पूजा भी कर लेना। माताजी ने नई चूड़ियां मंगवाई, अपने हाथ से पहनाए और पूजा आदि करने के बाद ही मैं वापस आई। कमरे में लौटकर जब मैंने गुरुजी की बात बताई तो इन्होंने माताजी के साथ हुई बातचीत बताई। हम दोनों हैरान थे कि गुरुजी को सब बात कैसे पता हो जाती है। वास्तव में वे दोनों एक ही थे, कोई नीचे माताजी से बात करता, ऊपर गुरुजी को स्वतः ही वह बात पता हो जाती। कभी गुरुजी से कोई बात करता तो माताजी को नीचे सब पता हो जाती थी।
हम लोग अक्सर गुरुजी की डांट भी सुनते थे। डांट सुनकर नीचे उतरते तो माताजी पहले ही आवाज लगाकर बुला लेती और प्यार दुलार लुटाकर मन हल्का कर देती।
हम लोग सोचते ही रह जाते कि माताजी को कैसे पता चल गया कि गुरुजी ने हमें डांट लगाई है, पर वो तो जगतजननी थी।
सबके दिल का हाल चाल उन्हें पता रहता था।
उनका प्यार पाते ही हम लोगों को जैसे पंख लग जाते थे और हम गुरुजी की डांट भूलकर दुगुने उत्साह से काम में लग जाते। ऐसा हम सभी कार्यकर्ता महसूस करते रहे हैं। जब गुरुजी ने बारिश में खड़े होकर दीक्षा दी,
श्रीमती मिथिला रावत बताती हैं कि यह शक्तिपीठों की प्राण प्रतिष्ठा के समय की बात है। The 26th of January 1982 को छतरपुर में गुरुदेव का कार्यक्रम चल रहा था। अगला कार्यक्रम वल्लभगढ़ में था। हम गुरुदेव को लेने छतरपुर पहुंचे। गुरुदेव को सुबह 8 o'clock बजे छतरपुर पहुंचना था। गाड़ी लेट थी सो गुरुदेव 2 o'clock बजे पहुंचे। लोगों का उत्साह देखते ही बनता था। उस दिन खूब बारिश हो रही थी, फिर भी स्टेशन से शक्तिपीठ तक जगह जगह लोग गुरुदेव के स्वागत के लिए छाते लिए भीगते हुए खड़े थे। सबसे मिलते मिलाते गुरुदेव 7 o'clock बजे शक्तिपीठ पहुंच पाए। पंडाल में जनता दीक्षा लेने के लिए बैठी थी।
देर हो जाने व तेज बारिश के चलते आयोजकों ने कार्यक्रम में परिवर्तन करना चाहा तो लोगों ने कहा कि हम गुरुजी के दर्शनों के लिए बैठे हैं, हमें तो दीक्षा भी लेनी है।
गुरुजी तक संदेश पहुंचा तो गुरुजी बोले, अच्छा बेटा,
यदि हमारे बेटे इस बारिश में भी हमें सुनना चाहते हैं और दीक्षा लेना चाहते हैं तो हम तैयार हैं। गुरुदेव के लिए मंच पर कुर्सी रखी गई।
आधा घंटा गुरुजी ने प्रवचन दिया, सबको दर्शन दिया। छतरी के नीचे खड़े खड़े ही उन्होंने दीक्षा दी।
वे थके हुए भी थे, चाहते तो मना भी कर सकते थे, पर भक्तों की इच्छा का मान रखने वाले भक्त वत्सल, वे भला कैसे मना कर सकते थे।
कार्यक्रम के पश्चात जैसे ही मैं गुरुदेव से मिलने पहुंची, गुरुदेव हमें देखते ही बोले, बेटा
तू क्यों चली आए, क्या मैं बच्चा हूँ जो तू लेने चली आए।
अगले दिन 27 तारीख को हम लोग वल्लभगढ़ के लिए रवाना हुए। गुरुजी ने मुझे भी अपने साथ ही बिठा लिया, बोले, चल
बैठ बैठ बैठ। रास्ते भर कितनी बातें करते गए।
मैं थोड़ा संकोच से बैठी थी। बोले, बेटा ठीक से बैठ जा।
थोड़ी थोड़ी देर में ध्यान भी देते रहते कि मैं ठीक से तो बैठी हूँ।
रास्ते में एक जगह लघुशंका के लिए गाड़ी रुकवाई। मुझसे बोले, बेटा तू भी चली जा। फिर इधर उधर नजर दौड़ाए और बोले, जा उधर झाड़ी में चली जा, गिलास में पानी लिए खड़े रहे। मैं लौटी तो बोले, ले पानी ले ले। स्वयं पानी दिया। इतनी आत्मीयता, इतना प्यार, इतनी व्यवहारिकता, कोई पिता भी क्या दे सकता है जो गुरुजी ने दिया। हम शांतिकुंज आए हुए थे।
बड़ी बेटी का रिश्ता रावत जी जहाँ करना चाहते थे, वहाँ के लिए वह तैयार नहीं थी। जिसकी 4 बेटियां हों, उनकी शादी के लिए पिता को चिंता होना तो स्वाभाविक ही है। रावत जी रात में हमें बहुत नाराज हुए। गुस्से में यह भी कह गए कि जा अपने बाप के पास जा, वहीं जाकर कर लेना इसकी शादी।
हम रात भर खूब रोए।
सुबह होते ही गुरुजी ने हम तीनों को बुलाया और रावत जी से बोले, तू इस पर नाराज क्यों होता है, ये मेरी बड़ी प्यारी बेटी है,
इस पर नाराज मत हुआ कर। और बोले, जाओ। हम लोग लौट आए। उसी दिन मुझे घर भी लौटना था, बाकी परिवार घर पर ही था।
मैं अपना सामान उठाकर चलने ही वाली थी कि मन में आया, जाते जाते गुरुजी से मिल लूं। मैं दौड़कर गुरुजी के पास चली गई।
गुरुजी अपने कमरे में टहल रहे थे।
मैंने प्रणाम किया और पता नहीं क्या हुआ, मैं जोर जोर से रोने लगी। गुरुजी ने मुझे छोटे बच्चे की तरह अपने सीने से लगा लिया। मेरे आंसू पोंछे, प्यार से वे मुझे बेबी बुलाते थे।
बोले, रो मत बेबी, मैं हूँ ना तेरा बाप,
मैं करूँगा तेरी बेटियों की शादी,
जैसे तू कहेगी, जैसे ब्राह्मण से तू कहेगी, सर्विस वाला, बिजनेस वाला जैसा लड़का कहेगी वैसा ढूंढ दूंगा। तू चिंता मत कर बेटा, मैं तेरा पिता हूँ। फिर बोले, अब बेटा तू आ जा, बार बार कहता हूँ, तू सुनती नहीं। हम शांतिकुंज आ गए।
गुरुजी कहते, बेटा लड़कियों की शादी की जिम्मेदारी मेरी है।
हमारी सब समस्याएं उनकी हो गईं। खूब संघर्ष सहा, पर पग पग पर उन्हें साथ खड़े पाया।
इतना प्यार, इतना दुलार उन्होंने दिया कि हमारे पास बताने के लिए शब्द भी नहीं है। क्यों सिकुड़ा बैठा है?
श्री लक्ष्मण अग्रवाल, बिलासपुर। शक्ति पीठों के उद्घाटन हेतु जब छत्तीसगढ़ में पूज्यवर का कार्यक्रम चल रहा था, तब मैंने सोचा क्यों न गुरुदेव के सान्निध्य लाभ का सौभाग्य प्राप्त किया जाए। घर दुकान का काम बच्चों को समझाकर एक माह गुरुदेव के साथ रहूंगा। यह सोचकर कार ड्राइवर व मैं भिलाई हेतु निकल पड़े, क्योंकि गुरुदेव वहां के उद्घाटन के बाद सड़क मार्ग से आने वाले थे। भिलाई के कार्यक्रम के बाद गुरुदेव हमारी गाड़ी में बैठे। मैं अपने सौभाग्य को धन्य मान रहा था। वहां से रायपुर आए, इस बीच पूज्यवर ने मुझे अपने पास ही बैठाया।
मुझे थोड़ा संकोच हो रहा था, अतः मैं सिकुड़ा हुआ बैठा था। गुरुदेव ने चुटकी ली, क्यों सिकुड़ा हुआ बैठा है? मैं अछूत हूँ क्या? मुझसे कुछ भी जवाब देते नहीं बना।
फिर मैं सहज होकर ठीक से बैठ गया। ऐसे थे गुरुदेव, छोटी छोटी बात का भी ध्यान रखते थे। बेटा जयंतीलाल, मैं यहाँ हूँ। श्री जयंतीलाल पटेल, राजनांदगांव।
यह 1969 की बात है। उन दिनों मैं गुजरात में रहता था।
एक बार अहमदाबाद में गुरुदेव का कार्यक्रम था।
संयोग से मैं खरीदी करने गया हुआ था। स्टेशन पर मैंने पर्चा लगा देखा।
सोचा रात को गुरुजी के पास मिलने चला जाऊंगा।
रात में मुझे थोड़ी देरी हो गई।
घर खोजते खोजते रात के 12:30 बज गए थे।
मणिनगर में मैं घर खोज रहा था कि इतने में एक छत पर से आवाज आई, बेटा जयंतीलाल,
मैं यहाँ हूँ, तू यहाँ आ जा। मैंने ऊपर देखा, छत पर गुरुजी खड़े थे।
उन्होंने एक परिजन से कहा कि जाओ दरवाजा खोल दो और इन्हें ऊपर ले आओ। मुझे आश्चर्य हुआ कि गुरुजी को इतनी रात में भी पता चल गया कि मैं रास्ता ढूंढ रहा हूँ और वे छत पर से मुझे बुला रहे हैं।
जैसे ही मैं ऊपर पहुँचा, गुरुजी बोले, आओ बेटा, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। रात्रि का 1 बज रहा था, फिर भी गुरुजी ने मुझसे बातचीत की।
फिर मुझे सोने के लिए भेज दिया।
इतना स्नेह, इतनी आत्मीयता, बच्चों का ऐसा इंतजार, वहाँ कैसे न व्यक्ति सब कुछ न्यौछावर कर दे।
आओ बच्चों, तुम्हें माताजी के दर्शन करा दूं।
श्री मदनलाल नामदेव, करही, खरगोन।
बात 1964 सितंबर की है।
मैंने अपने दो साथियों श्री दीपचंद राठौर और अंतर सिंह मंडलोई के साथ संकल्प किया, मथुरा पहुंचकर पूज्य आचार्य जी से जब तक नहीं मिलेंगे तब तक भोजन नहीं करेंगे। सो शाम 7 बजे के लगभग मथुरा पहुंचते ही साइकिल रिक्शा किया, किंतु प्राचार्य जी के आग्रह व निर्देश से द्वारकाधीश की आरती व दर्शन के मोह के कारण हम रात 8:30 के लगभग तपोभूमि पहुंचे।
वहां पहुंचने पर बाहर से ही बताया गया कि वे घियामंडी चले गए हैं और 8:30 बजे सो जाते हैं,
अतः अब मिलना ही हो तो प्रातःकाल आना।
अब उनसे मिलना संभव नहीं है।
परंतु हमारा मन उनके दर्शनों को छटपटा रहा था। सो पूर्ण आत्मविश्वास से घियामंडी के लिए रिक्शा मोड़ लिया। दरवाजा ठोका, आवाज लगाई, दरवाजा खुला और खोलने वाले के पीछे पीछे उस भूतहा मकान की छत पर हम पहुंचे। हमारे इष्टदेव पूज्यवर पुरानी खाट पर मात्र धोती पहने बैठे थे। जैसे ही आंखें मिली,
हम नजदीक पहुंचे और अपनी पूजा के फूल श्रीफल उनके श्रीचरणों में चढ़ाते। उसके पूर्व ही उन्होंने कहा कि मैं कब से तुम्हारी राह देख रहा हूँ।
हम अपनी शुद्ध बुद्ध भूल गए और उनका अपार प्रेम पाकर अनुग्रहित हो गए। उन्होंने पकड़कर गले लगाया और जबरन अपने पास बिठा लिया। तीनों से अलग अलग पारिवारिक प्रश्न पूछे, समाचार जाने, जिसने हमें चमत्कृत, विस्मृत और आह्लादित कर दिया। फिर वे श्रीकृष्ण, अर्जुन और सत्यनारायण कथा के गूढ़ार्थ कहते हुए धर्म की सामयिक परिभाषा समझाने लगे। लगभग 20 मिनट बाद उन्होंने कहा, आओ बच्चों, तुम्हें माताजी के दर्शन करा दूं। उन्होंने माताजी को आवाज लगाई, कहा, तुम्हारे बेटे आए हैं। एक सांवली सी साधारण पोशाक वाली महिला सामने थी। मुखमंडल पर आभा।
हमें तब तक भी नहीं मालूम था कि वे कौन थीं और पूज्यवर का उनसे क्या रिश्ता है।
फिर गुरुजी ने अखंड ज्योति और उनकी पूजा स्थली आसन दिखाई और कहा कि बेटा, अब अपने प्राचार्य जी और साथियों को लेकर प्रातः तपोभूमि आना, हम वहां मिलेंगे।
अब हमें उन फूलों व श्रीफल और भेंट का ध्यान आया जो अब तक हमारे हाथों में थे। संकोच के मारे हमने वे वहीं माताजी के चरणों में रख दिए।
पूज्यवर को प्रणाम किया, विदा हुए। ऐसा उच्च स्तरीय असीम प्यार पाकर हमारे वे क्षण चिरस्मरणीय हो गए।
उस आनंद की अनुभूति आज भी हृदय में अंकित है।
मेरा हनुमान आ गया। श्री श्री कृष्ण अग्रवाल जी, शांति कुंज। एक बार परम वंदनीय माताजी को रक्षा कवच हेतु चांदी के ताबीज की आवश्यकता पड़ी। उन्होंने सुबह 4:00 बजे मुझे फोन किया। बेटा, 50,000 चांदी के ताबीज लाना है, तू दिल्ली चला जा, वहां से ले आना। मैंने कहा, माताजी, सोनी जी से कह देता हूँ, वह दिल्ली जाते रहते हैं, ले आएंगे। माताजी ने कहा, नहीं बेटा, मुझे जल्दी जरूरत है, इसीलिए तुझे सुबह 4 बजे कह रही हूँ,
तू अभी चला जा।
यदि प्रणाम करने का मन हो तो मैं किवाड़ खुलवाए देती हूँ,
तू प्रणाम कर जा। मैंने कहा, माताजी, अगर ऐसी बात है तो मैं अभी चला जाता हूँ।
तैयार तो हो ही चुका हूँ, आप मुझे फोन पर ही आशीर्वाद दे दें, क्योंकि प्रणाम करने आपके पास आऊंगा तो दरवाजा खोलने आदि में समय लगेगा, तब तक मैं बहुत आगे निकल जाऊंगा। माताजी ने कहा, मेरा आशीर्वाद है बेटा, तू जा। और मैं चला गया। 5 बजे हरिद्वार से बस में बैठकर 10:30 बजे दिल्ली पहुंचा। घंटे भर में खरीदारी हो गई। दोपहर 12:00 बजे बस में वापसी हेतु बैठा। शाम 5:00 बजे शांतिकुंज पहुंच गया। शाम को ही वंदनिया माताजी को ताबीज देने पहुंचा।
माताजी जैसे मेरा इंतजार ही कर रही थी।
मुझे आते देख बोली, मेरा हनुमान आ गया। उनके इन प्यार भरे शब्दों को सुनते ही मेरी सारी थकान गायब हो गई। ऐसा लगा जैसे शक्ति संचार हो गया हो। बाद में इन्हीं चांदी के ताबीजों में रक्षा कवच भरकर व साथ में रुद्राक्ष रखकर परम वंदनीय माताजी ने एक एक प्रतीक अपने सभी गायत्री परिजनों को दिया था।
यह अपने जाने के बाद भी उनकी रक्षा करने का आश्वासन था,
जिसका लाभ गायत्री परिवार के परिजन आज भी उठा रहे हैं। मैं तेरी माँ हूँ। श्री प्रेम जी भाई काका जी, शांति कुंज। सन 1983 में मैं हरिद्वार कच्छी आश्रम आया था।
वहाँ केवल मुंह पर एक माह का उपवास कर रहा था।
ब्रह्मवर्चस के श्री जेठा भाई पी ठक्कर जी कच्छी आश्रम आते थे। एक दिन वे मुझे शांति कुंज लाए। उन्होंने मुझे शांति कुंज घुमाया व माताजी से भी मिलाया।
मैंने माताजी को प्रणाम किया तो उन्होंने पूछा, कोई तकलीफ है क्या? मैंने कहा, माताजी और तो कोई तकलीफ नहीं है, बस एक पीड़ा है। मेरी माँ जब मैं 1.5 साल का था तभी गुजर गई थी। सौतेली माँ ने बहुत सताया, अतः मैं माँ के प्यार से वंचित रहा। बस यही पीड़ा मुझे सताती है।
माताजी ने तुरंत कहा, बेटे, मैं तेरी माँ हूँ, तू यहाँ का हो जा,
मेरा काम कर,
मन से चिंता छोड़ दे, मैं तुझे संभाल लूंगी,
तू हमेशा मुझसे मिलते रहना। उनकी वाणी में न जाने क्या जादू था, मुझे लगा जैसे मेरी माँ मिल गई। अप्रैल सन 1985 में मैं अपना सब कारोबार समेट कर हमेशा के लिए शांति कुंज आ गया।
माताजी का असीम प्यार पाया,
यही मेरी अनमोल निधि है। हमें हंसी आ गई।
श्रीमती प्रेरणा वाजपाई, शांति कुंज।
अंतिम दिनों में माताजी का स्वास्थ्य बहुत खराब था। मैं, अंशु और जीजी आग शून्य शैल जीजी बारी बारी से हर समय उनकी सेवा में रहते थे। हम लोग उन्हें एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ते थे। उतने कष्ट में भी हमने देखा माताजी की ममता हर पल उमड़ती रहती थी। एक दिन अंशु मुझसे कहकर गई कि आज मैं थोड़ी देर से आऊंगी,
तब तक तुम रुकना। मुझे देर तक रुका हुआ देखकर माताजी बोली, तू जा, खाना खा, तुझे भूख लगी होगी। मैंने कहा, खा लूंगी माताजी, अंशु अभी आती ही होगी। माताजी बोली, तू जा, क्यों चिंता करती है, मैं तो हूँ, जबकि माताजी स्वयं ही अत्यधिक बीमार थी।
उनकी बात सुनकर मैं और शैल जी जोर से हंस पड़े। पीड़ा के कारण माताजी हंस नहीं सकी, पर वो भी मुस्कुरा दी। किसी भी स्थिति में उनका अपना माँ का भान गया नहीं।
वो जगदम्बा जो थी, बेटी तू आ गई। डॉक्टर मंजू चौपदार, शांति कुंज। एक दिन डाकिया एक पत्रिका लाया, जिसका नाम था अखंड ज्योति। उसके साथ एक पत्र भी था जो घियामंडी मथुरा से लिखा गया था। लिखा था, इस पत्रिका का उड़िया में अनुवाद करो। मुझे आश्चर्य हुआ, मैं वहां न तो किसी को जानती थी और न ही ऐसा कोई पत्र व्यवहार हुआ था जिससे वह पत्रिका भेज दे। फिर भी मैंने उत्सुकतावश उसे पढ़ा, अनुवाद किया व भेजा।
उन्हें पसंद आया और क्रम चल पड़ा।
इस तरह 2 वर्ष अनुवाद करते व्यतीत हो गया। 2 साल तक गुरुदेव का साहित्य पढ़ने व अनुवाद करने पर मेरा मन उनके प्रति श्रद्धा से भर गया। अतः उनसे मिलने दर्शन करने की तीव्र इच्छा होने लगी। किंतु उन दिनों हरिद्वार के लिए कोई सीधी गाड़ी नहीं थी, इसलिए कुछ दिन यूं ही बीते। एक दिन मैं अपने आप को रोक नहीं पाई, 500 रुपये रखे और घर में बिना किसी को बताए अकेले ही ट्रेन में बैठ गई। दूसरे दिन दिल्ली उतरी।
कुली से पूछताछ कर रात को मसूरी एक्सप्रेस में बैठ गई।
सवेरे हरिद्वार पहुंची।
दिसंबर माह की कड़कड़ाती ठंड और ऊपर से स्टेशन पर पहुंचते ही जमकर बारिश होने लगी। हरिद्वार में इतनी ठंड होगी, इसकी मुझे कल्पना भी नहीं थी। मैंने स्वेटर वगैरह भी नहीं रखा था, ठंड से कांप रही थी। 3 दिन से खाया पिया भी नहीं था।
चलने से पहले कुछ भी सोचा नहीं था। अब हरिद्वार पहुंचने के बाद सोचने लगी, अकेली आ तो गई, गुरुजी को कभी देखा भी नहीं है।
पता नहीं वे मुझे पहचानेंगे कि नहीं, यदि नहीं पहचाना तो क्या होगा,
आदि आदि। इसी प्रकार सोचते सोचते तांगा पकड़ा वह शांति कुंज पहुंची। पूज्य गुरुदेव नीचे ही मिल गए। देखते ही उन्होंने कहा, बेटी तू आ गई।
ना जाने मुझे क्या हुआ, मैं रोने लगी। उन्होंने मुझे बहुत प्यार किया, सिर पर हाथ रखा व कहा, अरे तू तो ठंड से कांप रही है,
जा माँ से मिल ले। मैं जब ऊपर माताजी के पास पहुंची तो गुरुजी ने माताजी से कहा, छोरी को कपड़े दो, स्वेटर भी नहीं लाई। माताजी ने मुझे कपड़े दिए, स्वेटर पहनाया व स्वयं पास बिठाकर खाना खिलाया।
मुझे बहुत चैन मिला और मैं सो गई। बाद में उठकर घर पर फोन किया कि मैं हरिद्वार में हूँ। तब तक घर के लोग काफी परेशान थे।
फिर मेरा मन हुआ कि आई हूँ तो एक अनुष्ठान कर लूँ। मैंने अनुष्ठान किया। मेरे मन में बार बार विचार आने लगा कि पूर्णाहुति पर गुरुजी माताजी को क्या दूँ। मेरे पास पैसे कम थे, अतः मैंने पूर्णाहुति के दिन गुरुजी माताजी की आरती उतारी, पूजा की व अपनी चूड़ी हार और अंगूठी उतार कर दे दी। माताजी ने सिर पर हाथ रखा, बहुत प्रसन्न हुई व मुझे प्रसाद स्वरूप मिठाई व फल दिए। रास्ते का खाना एवं टिकट की व्यवस्था भी की। इस प्रकार गुरुदेव माताजी से मेरा प्रथम मिलन अविस्मरणीय बन गया।
तेरे घर क्या है?
श्री अगाधु महापात्र, दंतवाड़ा, बस्तर।
घटना शक्तिपीठों की प्राण प्रतिष्ठा के समय की है।
दंतवाड़ा के प्रमुख कार्यकर्ता श्री अगाधु महापात्र जी ने उद्घाटन हेतु पत्र लिखा। तब जवाब मिला, गुरुवर दौरे पर निकल चुके हैं,
अब संभव नहीं है। क्षेत्रों से संपर्क करने पर भी वहां के व्यवस्थापकों ने मना कर दिया।
अतः हताश होकर निर्माण कार्य शिथिल करा दिया और बुझे मन से बैठ गए। अचानक एक दिन प्रातः 8 बजे एक कार्यकर्ता आया और कहा, कल गुरुजी यहां उद्घाटन के लिए आ रहे हैं, तैयारी रखें। वे हर्ष विह्वल हो गए। गुरुदेव आए, उद्घाटन हुआ। वे बेचारे बहुत गरीब थे।
अतः पूज्यवर व उनके सहयोगियों के भोजन का इंतजाम एक इंजीनियर साहब के घर किया गया।
चाहते तो बहुत थे कि पूज्यवर को अपने घर भोजन कराते,
पर केवल गुरुदेव को निमंत्रण कैसे दें? सबकी व्यवस्था कर पाना उनके लिए संभव नहीं था, पर महाकाल से कुछ छिपा रहता है भला।
पूज्यवर ने उद्घाटन के बाद कहा, अगाधु, भोजन का क्या इंतजाम है? गुरुजी, इंजीनियर साहब के घर भोजन की व्यवस्था की गई है, अगाधु जी ने उत्तर दिया।
अच्छा, तेरे घर क्या है? कहते हुए गुरुजी उनके घर की ओर बढ़ गए।
वे चुप रह गए।
कैसे कहें, इच्छा तो बहुत थी कि गुरुवर मेरे घर में भोजन करते, पर इतनी बड़ी व्यवस्था नहीं कर सकता था क्योंकि गुरुजी के साथ कई लोग थे।
घर में माँ ने प्रसाद स्वरूप थोड़ी सी खीर बनाई थी, शायद गुरुदेव आ जाएं। सो उसी को गुरुदेव को रोटी के साथ कटोरी में दे दिया।
गुरुदेव बड़े प्रेम से खीर की प्रशंसा करते हुए खाए जा रहे थे।
सभी कार्यकर्ता खड़े थे, वह अगाधु जी भाव विभोर थे। लीलापति की लीला देख सभी धन्य हो रहे थे, ऐसा था उनका स्नेह।
कहीं तो सभी के खाए बिना खाते नहीं और कहीं अकेले ही भक्त का मान बढ़ा रहे थे।
वह विलक्षण प्यार की अनुभूति थी। श्री जयराम मोटलानी, शांति कुंज। उन्हें सबका ध्यान रहता था। मैं उन दिनों नया नया ही शांति कुंज आया था। 1989 का गुरु पूर्णिमा पर्व था। गुरुजी का प्रणाम चल रहा था। हम कुछ भाई भोजन परोसने में तल्लीन थे।
प्रणाम का क्रम पूरा होने जा रहा है, इसका हमें पता नहीं चला।
तभी एक भाई हमारे पास आए और बोले, चलो सब लोग, गुरुजी बुला रहे हैं, प्रणाम का क्रम समाप्त होने वाला है। हम लोग उन भाई के साथ चल दिए। उन्होंने बताया कि जैसे ही प्रणाम का क्रम पूरा होने वाला था, पूज्यवर ने कहा, देखना उधर कुछ बच्चे भोजन परोस रहे हैं,
उन्होंने प्रणाम नहीं किया है,
उन्हें बुला लाओ। ऐसे थे वे दूरदृष्टा, उनकी निगाह सब पर रहती थी। 1989 में ही पूज्य गुरुदेव ने कार्यकर्ताओं से 11 वर्ष तक घर न जाने का संकल्प पत्र भरवाया था। मैं उस समय शांति कुंज में नहीं था, अतः संकल्प पत्र नहीं भर पाया था, पर मन ही मन संकल्प कर लिया था।
सन 1992 में मैं टोली में गया था।
मेरी छोटी बहन की शादी थी।
घर से मेरे लिए बार बार पत्र आ रहा था। शांति कुंज से भी मुझे लौट आने के लिए कहा गया, पर मैंने मना कर दिया कि मैं शादी में नहीं जाऊंगा।
तब माताजी ने एक भाई को भेजा व मुझे लौट आने का संदेश भिजवाया। मैं जब माताजी के पास पहुंचा तो माताजी ने पूछा, लल्लू तेरी बहन की शादी है, जाता क्यों नहीं? मैंने कहा, माताजी मैंने 11 वर्ष तक घर न जाने का संकल्प लिया है। इस पर माताजी बोली, संकल्प किसे दिया था, मुझे ही न, मैं ही कह रही हूँ कि जा। माताजी ने मुझे 1000 रुपये दिए और कहा, बेटा बहन की शादी है न, यह बहन को देना। उनकी लीला ही न्यारी थी।
कभी तो वे घर जाने के लिए मना करती और कभी टोली में से भी वापस बुलाकर भेज देती थी। इसके पहले एक बार घर वालों का बहुत दबाव पड़ रहा था तो मैंने माताजी से घर जाने के लिए पूछा, तब वे बोली थीं, न बेटा न, घर जाओगे तो खेती बाड़ी और काम धंधे में फंस जाओगे। फिर मेरे सिर पर हाथ रखा और इतना प्यार दिया, लगा कि उनसे अधिक प्यार करने वाला संसार में और कोई नहीं है।
वह विलक्षण प्यार की अनुभूति थी। वह सुअवसर मुझे फिर कभी नहीं मिला। श्रीमती रुक्मिणी माहेश्वरी, शांति कुंज।
सन 1980 की बात है।
किसी प्रकार का अभाव न होते हुए भी हमें मानसिक शांति नहीं थी। तब मेरी बड़ी बहन श्रीमती सरला रानी ने गायत्री चालीसा दिया व मंत्र लेखन हेतु कहा। इससे प्रभावित होकर हम गुरुदीक्षा हेतु शांतिकुंज आए। पूज्य गुरुदेव वंदनिया माताजी के दर्शन किए। माताजी ने भोजन प्रसाद हेतु कहा, पर एकादशी उपवास के कारण मैंने भोजन नहीं किया, केवल पतिदेव ने किया। दूसरे दिन पुनः दर्शन, प्रणाम, यज्ञ किया।
समय होने पर भोजन के लिए गए, तब माताजी भोजन से पूर्व एक रोटी व चटनी अपने कर कमलों से दिया करती थी। दूसरे दिन भी मैंने रोटी व चटनी नहीं ली, क्योंकि प्रदोष व्रत था।
माताजी ने कहा, छोरी तू भी थाली ले ले, प्रसाद खा ले। लेकिन मैं नहीं बैठी।
दोपहर में माताजी से वापस जाने की अनुमति लेने गए, तब उन्होंने कहा, यहाँ तो तूने भोजन नहीं किया,
अब तुझे बाजार में जाकर 10 रुपये का कुछ खिलाएगा। बेटा, उपवास का अर्थ कुछ त्याग करना होता है। माताजी की बात का गूढ़ अर्थ मैं नहीं समझ पाई। हम हरिद्वार चले गए। वहाँ जो हमने फल मिठाई लिए, वे ठीक 10 रुपये के थे।
अब तो माताजी के शब्द मेरे कानों में गूंजने लगे तथा पश्चाताप के आंसू भी बहने लगे।
अगले माह पुनः शांतिकुंज आए। गुरुदेव ने दीक्षा संस्कार कराया, किंतु तब तक माताजी ने रोटी चटनी देना बंद कर दिया था। माताजी के हाथ का वैसा प्रसाद पाने का सुअवसर मुझे फिर कभी नहीं मिल पाया। मैं इस बात को पुनर्तः यहाँ आ जाने के बाद समझ पाई कि माताजी के उस प्रसाद में उनका कितना प्यार भरा था।
उनके तप का वह महाप्रसाद था जिसे मैंने ग्रहण नहीं किया, इसका पश्चाताप मुझे आज भी कम नहीं है।
डॉक्टर कमल कुमार दत्ता, मैं अक्सर गुरुदेव से आध्यात्मिक प्रगति के लिए प्रश्न पूछता रहता था। मैंने पूछा, गुरुदेव आप सदैव विभिन्न प्रकार के संकल्प कराते रहते हैं, यदि इस बीच किसी का शरीर न रहा व संकल्प अधूरा रहा तब क्या होगा? गुरुदेव, बेटे शांतिकुंज एक ऐसा स्थान है जहां जो भी सत्संकल्प किए जाएंगे पूर्ण होंगे। बस आपका पूर्ण प्रयास होना चाहिए। यदि संकल्प के बीच शरीर न भी रहा तो भी मैं उसे पूर्ण कर दूंगा।
प्रश्न, और यदि शरीर रहते संकल्प टूट जाए तब क्या करें?
गुरुदेव, फिर वही संकल्प करना चाहिए। प्रश्न, साधारण व्यक्ति जिसमें साधारण संस्कार हैं,
हम अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए क्या करें?
गुरुदेव, सतत संबंध, सतत प्रयास। प्रश्न, आत्मा की आवाज कैसे सुनी जाए? गुरुदेव, अपना परिष्कार कर श्रद्धा विश्वास से जीवन का आदर्श लक्ष्य तथा आत्मीयता का विस्तार करके सुनी जा सकती है।
प्रश्न, दुख कैसे दूर किए जाएं?
गुरुदेव, अज्ञान अभाव और आसक्ति को हटाकर दुख दूर किए जा सकते हैं। 2,
यह तो गूंगे का गुड़ है।
वे परिजन जो पूज्य गुरुदेव के साथ मथुरा से जुड़े और फिर उनके बुलाने पर शांतिकुंज भी आ गए,
यहीं के होकर रह गए। जिन्हें गुरुदेव ने नींव के पत्थर कहा है उनके पास इतने संस्मरण हैं कि यदि सबको प्रकाशित किया जाए तो वाण्मय के 108 खंड भी कम पड़ जाएंगे। उनके निजी जीवन के अनुभवों को तो वे प्रकट भी नहीं करना चाहते। यदि कभी करते भी हैं तो उन्हें प्रकाशन में लाना नहीं चाहते। वे उन क्षणों को याद कर भाव विभोर होकर बस यही कहते हैं, यह तो गूंगे का गुड़ है। जो स्वाद हमने चखा है उसे बयान करने के लिए शब्द नहीं है।
बेटा, हमारा जीवन सफल हो गया।
हम तो जन्म जन्मांतरों के लिए अपने गुरु के ऋणी हो गए हैं। हर जन्म उनके साथ रहें, बस यही तमन्ना है। एक बात जो सब कोई कहते हैं वह यह कि गुरुदेव का जीवन व्यवहार अति सरल और सादगी भरा था। उनके सादे वेश को देखकर पहली नजर में तो हर कोई आश्चर्य से भर जाता था कि यही वे उच्च कोटि के संत हैं जिनसे मैं मिलने आया हूँ। संत इतने सरल भी होते हैं। जाने कौन सा चुंबक था, क्या आकर्षण था उनके भीतर की फिर उस क्षण भर की मुलाकात में ही वह उनका होकर रह जाता था। सादगी के आवरण में वे स्वयं के अलौकिक स्वरूप को छिपाए रहते थे। उनके साथ रहते हुए हमने अपनी आराध्य सत्ता के विभिन्न रूपों का दर्शन किया है। कभी कभी हंसी मजाक करते हुए या सहज बातचीत के क्रम में वे अपने आप को प्रकट भी करते थे। अचानक कुछ ऐसे वाक्य बोल जाते कि हमें लगता कि कहीं वे अवतारी चेतना तो नहीं, परंतु जब तक हमारा ध्यान उनके संकेतों की ओर जाता वे बात पलट देते थे। जब कभी किसी परिजन पर कष्ट पड़ा या हृदय से किसी ने उन्हें पुकारा तब उन्होंने उसे अपने भगवत स्वरूप के दर्शन भी कराए हैं। यहाँ जो परिजन उनके साथ लंबे समय तक रहे हैं उनमें से कुछ थोड़े से परिजनों के थोड़े से संस्मरण दिए जा रहे हैं।
शेष परिजनों के संस्मरण पाठकगण अगले संस्करण में पढ़ सकेंगे। श्री देवराम पटेल। श्री देवराम पटेल जी 1971 में मथुरा के विदाय समारोह के बाद पूज्य गुरुदेव के आदेशानुसार उनके साथ ही शांतिकुंज आ गए थे।
तब से वे सपरिवार शांतिकुंज में ही स्थायी रूप से निवास कर रहे हैं। प्रस्तुत हैं उनके संस्मरण उन्हीं के शब्दों में। गुरुजी जब युग निर्माण की नींव रख रहे थे तब उन्होंने स्वयं को सरलता व सादगी के आवरण में इस प्रकार छिपा कर रखा कि उनके साथ रहने वाला भी जान नहीं पाया कि वह साक्षात भगवत चेतना के साथ है। और जब लोगों ने उन्हें पहचानना प्रारंभ किया तब उन्होंने स्वयं को एक कमरे में कैद कर लिया। अपने जीवन काल के अंतिम कुछ वर्षों में गुरुजी ने सबसे मिलना छोड़ दिया था। श्री देवराम पटेल जी बताते हैं कि मथुरा में मैं जब शुरू शुरू में आया तो एक दिन मैंने उनके पैर पकड़ लिए। मुझे पता नहीं चला कि क्या हुआ, मैं बहुत देर तक उनके पैर पकड़े रहा।
जब बहुत देर हो गई तो गुरुजी बोले अब छोड़ दे और मेरे कंधे पकड़कर मुझे उठाया। फिर बोले अब तो आ गए, अब कहाँ जाओगे।
बात साधारण थी पर अलौकिक थी क्योंकि उसके बाद में उन्हीं का हो गया।
साधारण में भी कितनी असाधारण बात कह दी थी उन्होंने, इसका रहस्य तो वे ही जानते थे।
1969 में मैंने उनके दर्शन किए। 1969 में ही मैंने मथुरा में 9 दिन का सत्र किया।
1970 में 3 माह का समयदान और सन 1971 में मथुरा से विदाई के समय गुरुजी के साथ में शांतिकुंज आ गया। शांतिकुंज आया तो फिर यहीं का हो गया। शांतिकुंज का निर्माण। पटेल जी बताते हैं गुरुदेव के साथ हरिद्वार आने वाले व शांतिकुंज के निर्माण कार्य की देखरेख करने वाले पहले कार्यकर्ता श्री रामचंद्र जी थे। सन 1968 में रामचंद्र जी मथुरा आए थे। उसी समय गुरुजी ने हरिद्वार में शांतिकुंज के लिए जमीन ली थी। उन्होंने रामचंद्र जी से कहा तुम हमारे काम के लिए शांतिकुंज चलो। रामचंद्र जी बोले गुरुजी वहां रहने की कुछ व्यवस्था हो जाए तब तो मैं जाऊं। तब गुरुजी बोले बनने पर तो बहुत लोग पहुंच जाएंगे, तुम बनाने में हमारा सहयोग करो। रामचंद्र जी गुरुजी के साथ हरिद्वार आ गए। यहां आकर एक झोपड़ी बनाई गई
जिसमें रामचंद्र जी रहने लगे।
उसमें केवल एक खाट डालने जितनी ही जगह थी। उन दिनों गुरुजी मथुरा में ही रहते थे।
गुरुजी के जीवन में इतनी सादगी थी कि शांतिकुंज के निर्माण कार्य की देखरेख करने जब भी आते उसी झोपड़ी में उनके लिए खाना बनता।
रामचंद्र जी बाहर खाट बिछा देते,
गुरुजी वहीं बैठकर खाना खा लेते,
सोने के लिए सप्तऋषि आश्रम चले जाते। एक बार रामचंद्र जी ने कहा गुरुजी कम से कम 2 खाट पड़ने लायक जगह तो बना दो,
आप बाहर बैठते हैं तो अच्छा नहीं लगता। गुरुजी बोले कैदी जेल में रहता है ना, तो इसको जेल मान लो। इस प्रकार कितनी सरलता से उन्होंने सामंजस्य बिठाकर चलने की बात समझा दी।
स्वयं के प्रति कठोर।
गुरुजी अपने निजी खर्च के संबंध में बड़े कठोर रहते थे। यह सन 1968-69 की बात है।
शांतिकुंज अभी बन ही रहा था।
चारों ओर जंगल था। ईंट लाने, ठेकेदार से बात करने व अन्य बहुत से कार्यों के लिए शहर जाना पड़ता था। उन दिनों इस क्षेत्र में आवागमन का कोई साधन नहीं था। गुरुजी के मन में आया एक साइकिल खरीद लेते हैं।
अपने साथ ज्यादा पैसा वे लाए नहीं थे, अतः आधा पैसा स्वयं दिया व आधा पैसा रामचंद्र जी से लिया और साइकिल खरीद ली गई। उसी साइकिल से रामचंद्र जी के साथ साइकिल पर पीछे बैठकर ईंट भट्ठे वाले के पास चले जाते।
जहां भी जाते सामान नकद ही खरीदते थे, उधार कभी नहीं करते थे, न ही किसी से अनावश्यक सेवा ही लेते।
एक बार एक भट्ठे वाले के पास ईंट का ऑर्डर दिया और पैसा भी दिया।
भट्ठे वाले ने कहा हम आपको स्कूटर पर छोड़ देते हैं। इस पर गुरुजी बोले नहीं नहीं, हमारी तो रामचंद्र जी की साइकिल ही ठीक है। माताजी भी अपने लिए खर्च के मामले में बहुत ही कठोर थी।
अन्य सामान के विषय में भी समझाती, देखो कम कीमत में बढ़िया सामान होना चाहिए, 2-4 दुकान घूमो और दाम पूछो व सामान देखो।
जहां कम दाम में बढ़िया सामान मिले वहां से लो, क्योंकि नकद ले रहे हो। प्रारंभ में जब बगीचा लगाया गया तो गुरुजी रामचंद्र जी के साथ स्वयं सब नर्सरियों में जाते थे,
वहां से पौधादि खरीद कर लाते थे,
बगीचा लगाने में उनकी मदद भी करते,
स्वयं कुदाली लेकर गड्ढे भी बनाते,
बारिश के दिनों में नेकर पहन लेते और सिर पर पॉलीथीन की थैली लपेट लेते। वे गड्ढे खोदते जाते और रामचंद्र जी बताया करते थे कि मैं उनमें पौधे रोपता जाता। गुरुजी का व्यवहार इतना सरल था कि उन्हें देखकर कोई समझ ही नहीं पाता था कि वे इतने बड़े महापुरुष हैं। एक बार वे नीचे किसी काम में व्यस्त थे,
उन्हें भूख लगी, ठंड के दिन थे, बगीचे में टमाटर मूली आदि लगा था। रामचंद्र जी पौधों को पानी दे रहे थे। उस समय यहाँ दो चार ही परिवार थे,
कोई मूली को पूछता तक नहीं था।
गुरुजी ने दो मूली उखाड़ी,
रामचंद्र जी से उसे धुलवाया, कटवाया और बोले, जाओ माताजी से नमक ले आओ। और उन्होंने वहीं बैठकर मूली खा ली और बोले, नाश्ता हो गया, चलो काम करते हैं।
समय का सदुपयोग। गुरुजी समय को इतना महत्व देते थे कि किसी कारणवश एक क्षण भी यदि खाली हो तो उसके सदुपयोग की बात सोचते। एक दिन एक सज्जन उनसे मिलने आने वाले थे। उनको देर हो गई, गुरुजी उनका इंतजार कर रहे थे।
उन्होंने सोचा, कोई और काम नहीं है तो चलो भोजन ही कर लेते हैं।
उन्होंने माताजी को फोन किया, माताजी भोजन करने आ जाऊं। माताजी बोली, अभी तो एक ही बजा है। गुरुजी 3:00-4:00 बजे तक भोजन करते थे। बोले, अच्छा
अभी एक ही बजा है क्या?
अच्छा अच्छा
ठीक है, हम 10-11 बजे के लगभग कभी गुरुजी के पास जाते तो कभी कभी वे लेख लिख रहे होते। हम चुपचाप जाकर खड़े हो जाते और उनका लेखन पूरा होने का इंतजार करते। गुरुजी लेख पूरा हो जाने पर जब नज़र उठाकर मुझे खड़ा देखते तो कहते, अरे कब से खड़े हो?
बोल देते, तुम्हारा इतना समय बर्बाद नहीं होता। गुरुजी, आप लिख रहे थे, आपको डिस्टर्ब होता। अरे
मैं बाद में भी लिख लेता। इस प्रकार वे दूसरों के समय को भी महत्व देते थे।
कार्य की तल्लीनता। काम की धुन इतनी रहती थी कि एक बार सुबह सुबह 4 बजे ही सबको बुला लिया। हम सब आंख मलते हुए भागे भागे गुरुजी के पास पहुंचे।
जब कभी कोई महत्वपूर्ण योजना उनके मन में आती तो वे समय का इंतजार नहीं करते थे, कभी भी बुला लेते थे, फिर चाहे सुबह के 4 ही क्यों ना बजे हो।
काम के आगे भोजन को भी उन्होंने कभी महत्व नहीं दिया।
हम कभी भी पहुंच जाते थे। कभी कभी समय का ध्यान नहीं रहता था तो ऐसे समय भी पहुंच जाते जब वे भोजन कर रहे होते। भोजन करना बीच में ही छोड़कर पूछते, बताओ क्या काम है? मुझे अक्सर काम के ही सिलसिले में जाना पड़ता था। मैं चुप रहता, नहीं बताता तो भी खाना बीच में ही छोड़कर उठ जाते।
कहते, अच्छा चलो। माताजी कभी कभी स्नेह भरी नाराजगी प्रकट करती, दुष्ट लोग आचार्य जी को भोजन भी करने नहीं देते। भोजन ठीक से नहीं करने पर काम करते करते उन्हें भूख भी लग जाती थी। माताजी उन्हें भुने चने दे देती थी, कभी भूख लगने पर उन्हें ही मुट्ठी भर खा लेते। उन दिनों गुड़िया दीदी, गुरुजी की पोती, यहीं रहती थी। वह गुरुजी के आसपास डोलती रहती, कहती, दादाजी चीज दो। गुरुजी कहते, जा माताजी से ले ले। वह कहती, दादाजी आपके पास चने हैं ना? गुरुजी हंसते और अच्छा अच्छा ले लो कहकर उसे दे देते। गुरुजी बड़े व्यवहारिक थे।
एक दिन गुरुजी की खटिया के पास एक सांप आ गया और फन फैला कर बैठ गया,
फुफकारने लगा। गुरुजी खटिया पर लेटे थे,
जैसे ही उन्होंने देखा तत्काल कहा, ये काल है, मारो इसे,
किसी को काट देगा तो। हम सब खड़े थे,
सोच रहे थे कैसे मारें।
गुरुजी बोले, अच्छा
तुम लोग नहीं मारते,
लाओ मैं मार देता हूँ। उस समय जांजगीर चांपा के एक भाई श्री छेदीलाल साहू जी आए हुए थे। वे तुरंत लाठी लेकर आए और उस सांप को मार दिया। दिव्य शक्ति संपन्न गुरुदेव। गुरुजी दिव्य शक्तियों से संपन्न थे, पर उनका व्यवहार इतना सरल था कि जैसे बड़े साधारण हों। वे सदा स्वयं को छिपाए रहे।
इसीलिए कहते भी थे, मुझे मेरा काम कर लेने दो जिसके लिए मैं आया हूँ, अभी लोग जान जाएंगे तो हर की पैड़ी तक लाइन लग जाएगी,
इसलिए तुम लोग मुझे चुपचाप काम कर लेने दो।
मेरे जाने के बाद लोग मुझे जानेंगे। हम लोग कभी कभी काम की अधिकता के कारण गुरुजी से मिलने नहीं जाते थे। सोचते थे कि काम तो गुरुजी का ही कर रहे हैं, व्यर्थ उनका भी और अपना भी समय क्यों खर्च करें। तब कभी कभी गुरुजी कहते थे, तुम लोग अभी या नहीं रहे हो,
आगे चलकर मेरी चरण पादुका पर प्रणाम करने के लिए भी धक्के खाओगे, इतनी लंबी लाइन लगी रहा करेगी।
मेरा परिवार गुरुजी से जुड़ा तो बहुत पहले से था, पर मैं पहली बार जनवरी 1969 में बिलासपुर में गुरुजी से मिला।
गुरुजी वहां एक सभा में आए थे। उस समय बिलासपुर में ग्रेजुएट कॉन्फ्रेंस ठाकुर छेदीलाल सहकारी सभा कक्ष में उन्होंने कहा था, यह स्थान नोट कर लो, मेरा यह भाषण नोट कर लो और समय नोट कर लो, ये भाषण मैं कहां कहां कर रहा हूं पता लगा लेना। उस सभा में बिलासपुर के कर्मठ कार्यकर्ता श्री रामाधार विश्वकर्मा जी व उमाशंकर चतुर्वेदी जी भी थे।
इन दोनों भाइयों ने बाद में पता लगाया था। गुरुजी का वह प्रवचन उसी समय में 5 जगहों में हुआ था, जिसमें से एक कलकत्ता, एक ग्वालियर में हुआ था। एक बार गुरुजी ने पत्र व्यवहार के क्रम में बुलाया।
एक चिट्ठी दिखाते हुए उन्होंने पूछा, इसे जानते हो? उस समय चौके में टीकमगढ़ की एक लड़की रहती थी, सुधा श्रीवास्तव, उसके पिता हरिराम श्रीवास्तव जी का पत्र था।
मैंने कहा, जानता हूँ गुरुजी, सुधा के पिताजी हैं। पत्र में समाचार लिखा था, उन्हें पुत्र प्राप्ति हुई है।
गुरुजी बताने लगे, यह साल भर पहले आया था और मेरे साथ घूमने गया था। मैंने इसे खोद खोद कर पूछा, तब इसने बस इतना ही बताया कि मेरी 6 लड़कियां हैं। गुरुजी हर मिलने वाले से उसका हालचाल, कष्ट कठिनाई पूछते थे। फिर बोले, बेटा, इसे माताजी की तरफ से चिट्ठी लिख देना कि तुम्हारी सारी लड़कियों की शादी हम अच्छे घरों में कराएंगे और तुम्हारा लड़का संस्कारवान होगा। गुरुजी अपने संकल्पों के बड़े पक्के थे। जो एक बार निश्चय कर लिया है वह फिर टूट नहीं सकता।
मथुरा छोड़ने पर उन्होंने अपने निजी परिवार के कार्यों से मुक्त हो जाने का संकल्प ले लिया था।
एक बार माताजी बीमार थी। सतीश भाई साहब को चिट्ठी लिखनी थी। माताजी जिस भाई के द्वारा उन्हें पत्र लिखवाती थी, वे किसी कारणवश अपने घर गए हुए थे। गुरुजी बोले, चिट्ठी पटेल लिख देगा।
माताजी बोली, अगर देवराम लिख देगा तो सतीश यह समझेगा कि माताजी बहुत बीमार हैं।
वह परेशान हो जाएगा, इसलिए लाइए मैं ही अपने हाथ से धीरे धीरे लिख देती हूँ। माताजी ने ही चिट्ठी लिखी, किंतु गुरुजी ने नहीं लिखी। कारण, वे मथुरा से विदाई ले चुके थे।
अपने नियमों के प्रति बहुत कठोर थे।
परिवार से विदाई ले ली तो ले ली, सारा विश्व ही मेरा परिवार है। फिर उतने छोटे परिवार को ही कैसा महत्व, शांतिकुंज की महत्ता। गुरुजी शांतिकुंज में ठहरने, विशेषतः रात रुकने को बहुत महत्व देते थे।
माताजी अपनी गोष्ठियों में भी कहती थीं, बेटा, रात को जब तुम लोग सो जाते हो, तब हम और गुरुजी एक एक के सिरहाने जाते हैं और तुम लोगों की ब्रेन वॉशिंग करते हैं, जन जन्मांतरों के कुसंस्कारों को साफ करते हैं।
ठहरने के संदर्भ में गुरुजी चाहते थे कि परिजन शांतिकुंज में ही ठहरे, भले ही थोड़ी बहुत असुविधा होती हो पर आश्रम के वातावरण में ही रहें। एक बार श्री रामाधार जी शांतिकुंज आए। उन दिनों शांतिकुंज बहुत छोटा था। रामाधार जी परिवार समेत आए थे व परमार्थ आश्रम में ठहरे थे। गुरुजी ने पूछा, बेटा कहाँ ठहरा है? वह बोले, गुरुजी, यहाँ दिक्कत होती इसलिए परमार्थ आश्रम में ठहरा हूँ। गुरुजी ने तुरंत डॉक्टर साहब को बुलाया और बोले, प्रणव, इन बच्चों के लिए शांतिकुंज में जगह नहीं है, इसलिए तुम लोग भी बाहर ही ठहरो। फिर उन्हें बोले, जाओ तुरंत अपना सामान लाओ और यहीं ठहरो, जैसी भी जगह मिले। उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। वे तुरंत गए, अपना सामान ले आए और शांतिकुंज में ही रुके। गुरुजी प्रेरणाप्रद चीजों को सदा महत्व देते थे। गांधी पिक्चर तब नई नई आई थी, हरिद्वार में भी दिखाई जा रही थी। उस समय गुरुजी ने सबको 2-2 रुपये दिए थे और गांधी पिक्चर देखने के लिए कहा था। इसी प्रकार तब स्लाइड प्रोजेक्टर अभी नया नया ही आया था। उन्होंने मिशन के प्रचार प्रसार के लिए स्लाइड बनवाई और बाकायदा उसका प्रशिक्षण दिलाकर परिजनों को प्रचार प्रसार हेतु तैयार व प्रोत्साहित किया। स्नेह सलिला माताजी।
माताजी गुरुजी की छाया के रूप में रहीं। उन्हें लोग जान भी नहीं पाए। वे गुरुजी की आड़ में स्वयं को छिपाए रहीं। लोगों ने उनका स्वरूप तो तब जाना जब वे अश्वमेध यज्ञों में गईं। लोगों ने माताजी के प्रवचन सुने, उनके आशीर्वादों से निहाल हुए, तब लोग उन्हें जान पाए।
गुरुजी का संदेश देश विदेश में फैलाकर, थोड़े ही समय में अपना स्वरूप दिखाकर जल्दी ही उन्होंने अपनी लीला समेट ली। माताजी का पत्राचार। माताजी के पास हजारों चिट्ठियां आती थीं।
सबको पढ़ना, जवाब देना कठिन काम था, पर वे बड़ी सहजता से करती चली जाती थीं। प्रारंभ के दिनों में हमें भी एक दिन में 80-90 पत्र लिखने पड़ते थे। उतनी चिट्ठी पढ़ना और जवाब देना सरल काम नहीं था। हम कैसे करते थे, यह हमें भी नहीं पता। ऐसा लगता था जैसे कोई दिमाग में बैठकर लिखा रहा है।
कभी कभार एक आध चिट्ठी का जवाब हम पढ़ लेते तो स्वयं आश्चर्य करते थे। ऐसी विलक्षण शक्ति थी माताजी की। कभी कभी माताजी बोलती, तुम लोग सोचते हो बढ़िया चिट्ठी से बढ़िया आशीर्वाद मिलेगा। हम आशीर्वाद देंगे तभी तो आशीर्वाद मिलेगा।
कलेक्टर की चिट्ठी क्लर्क लिखता है, पर जब तक उस पर कलेक्टर के दस्तखत नहीं होते उसकी क्या कीमत। जब हम दस्तखत करेंगे तभी तो उसकी कीमत होगी।
वह तो बस माँ थी। वात्सल्य इतना था कि अपनी माँ भी क्या ध्यान रखती होगी।
उन दिनों माताजी के पास ऊपर चौके में ही चाय बनती थी।
हम पहले चाय नहीं पीते थे। यहाँ आए तो माताजी के दर्शन के पश्चात चुपचाप नीचे उतरने लगते तो माताजी जाने कैसे देख लेती थी। तुरंत बोलती, छोरा भाग रहा है, बुला।
फिर पूछती, चाय नहीं पी? यहाँ ठंड है, चाय नहीं पिएगा तो मरेगा क्या?
चल चाय पी। कभी कभी परिजनों को डांट कर भी भोजन करा देती। एक बार एक परिजन श्री एस एन सिंह जी आए। वे बोले, माताजी मैं तो रोटी ही खाता हूँ, चावल मुझे नुकसान करता है। इस पर माताजी बोली, देख बेटा, इसे चावल ही चावल खिलाना।
देखती हूँ कैसे नुकसान करता है। और वास्तव में उन्हें कुछ नहीं हुआ।
प्राण प्रत्यावर्तन शिविर में आखिरी दिन सबको पूरी कचौड़ी खिलाती थी,
साथ में रास्ते के लिए बांध कर भी देती थी। कहती, इतने दिन उपवास किया है, मन ललचाएगा, पर तुम लोग बाहर की चीज मत खाना, इसे ले जाओ, रास्ते में यही खाना।
घर पहुंचकर घर का बना खाना ही खाना।
श्री देवराम पटेल जी की पत्नी बताती हैं कि जब वे सन 1971 में शांतिकुंज आई तो उन दिनों में यहाँ चारों ओर जंगल था,
कोई विशेष आबादी भी नहीं थी। कुछ भी सामान लाना हो तो शहर जाना पड़ता था। मैं भरा पूरा घर छोड़कर आई थी, मेरी भाषा भी थोड़ी अलग थी, सो मुझे घर की बहुत याद आती थी।
पर माताजी तो माताजी, वह सबके मन की बात जान जाती थी। एक दिन मुझे बुलाया और बोली, घर की याद आती है, माँ की याद आती है।
मैं हूँ ना तेरी माँ,
तू मेरे पास आ जाया कर,
मैं तुम्हारी माँ बाप सब हूँ, लो पानी पियो। उन्होंने मुझे अपने हाथ से पानी पिलाया,
मेरा मन भर आया, पर उस दिन के बाद मुझे कभी घर की याद नहीं आई। लगा ही नहीं कि मैं घर से कहीं बाहर हूँ। सुबह माताजी के साथ आरती करते,
भजन गाते, माताजी कुछ न कुछ बात व चुटकुला आदि सुनाकर खूब हंसाती। एक बार बोली, चलो छोरियो, चूल्हा बनाते हैं। गए तो देखा, माताजी ने खूब सुंदर मिट्टी का चूल्हा बना कर रखा था।
क्योंकि हम छत्तीसगढ़ के हैं, सो हमें रोटी बनानी नहीं आती थी, माताजी ने अपने हाथ से हमें रोटी बेलना सिखाया।
कहती, आ छोरी, तुझे रोटी बनाना सिखाऊं, बाजरे की रोटी, मक्के की रोटी, पूरी, कचौरी, माताजी सब कुछ बनाना जानती थी। रोटी तो वो फटाफट हाथ से ही बनाती थी, उसके लिए उन्हें चकले बेलन की जरूरत नहीं पड़ती थी। माताजी सब काम जानती थी, शायद ही कोई काम ऐसा होगा जो उनसे छूटा हो। गाना बजाना, लिखना पढ़ना, सिलना आदि वे सब जानती थी।
प्रारंभ के एक दो साल तो ऐसे कटे जैसे हम माताजी के साथ पिकनिक मना रहे हों। माताजी दिन भर हंसते हंसाते किसी न किसी काम में व्यस्त रखती थी।
दोपहर के समय खाना बनाना व गाना बजाना सब होता। माताजी ढोलक बहुत बढ़िया बजाती थी, वे हारमोनियम लेकर बैठती तो किसी भी गीत की धुन तुरंत निकाल लेती थी। माताजी का प्रिय गीत था, मैंने तेरी गीता गाई,
टूटी फूटी भाषा में भर जग के कानों तक पहुंचाए, डॉट 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 डॉट, गंगा से गंगा जल लेकर गंगा को जलधार चढ़ाए, उनके पास से हम लोग काम करके नाच गाकर आनंदित होकर लौटते।
वे सदा कुछ न कुछ नया सिखाती रहती, उनकी दृष्टि हर चीज पर रहती। एक बार बोली, छोरी तेरा ब्लाउज पुराना हो रहा है। फिर उन्होंने कपड़ा निकाला और बोली, चल मैं तुझे ब्लाउज सिलना सिखाती हूँ। उन्होंने दराती हसियाब से ब्लाउज काटा,
मैं देखकर हैरान रह गई।
सुई धागा लेकर हम लोगों को ब्लाउज पेटीकोट सिलना सिखाया,
स्वयं के लिए भी सिला,
हम सबने सुई धागे से ब्लाउज पेटीकोट सिलकर पहने। माताजी हम लोगों की चूड़ी, बिंदी, साड़ी, ब्लाउज आदि हर छोटी बड़ी चीज का ध्यान रखती थी। कभी कभी बुलाती और पूछती, कोई तकलीफ तो नहीं है? फिर लड्डू, मिठाई, चूड़ी, बिंदी, साड़ी आदि देकर झोली भरकर भेजती। जाने कौन सा ऐसा अक्षय भंडार था उनके पास। फिर धीरे धीरे कन्या शिविर आदि शुरू हुए तो माताजी की व्यस्तता बढ़ती गई। उतनी व्यस्तता में भी वे एक एक का ध्यान रखती थी।
कभी भी बुलाती, उस छोरी के पास साड़ी नहीं है कहकर बुलाकर साड़ी देती, उसके पास अमुक चीज नहीं है कहकर कुछ देती।
इस प्रकार सबकी छोटी से छोटी आवश्यकता का भी वह ध्यान रखती थी। इतना ध्यान तो साक्षात जगदम्बा ही रख सकती हैं।
छह कभी कभी हम लोग मिलने जाते तब माताजी लिख रही होती, वे हम लोगों से बात भी करती जाती और लिखती भी जाती, सब हालचाल पूछती और एक दो बात कहकर खूब हंसाती भी, पर हमने देखा इतना सब करते हुए भी कलम उनकी बराबर चलती रहती, बात करते करते भी कलम रुकती नहीं थी, जैसे दोनों अलग अलग दिमाग से किए जा रहे हों। तू तो जा नहीं सकती। सन 1986 में मैं बहुत बीमार पड़ी, मुझे लकवा हो गया था,
मैं बिल्कुल बिस्तर से लग गई,
मेरा उठना बैठना, चलना फिरना, खाना पीना आदि सब बंद हो गया था। डॉक्टर बोले कि अब यह नहीं बचेंगी। एक माह से भी अधिक समय हो गया था, मैं बिस्तर से उठ भी नहीं सकती थी।
सबने मेरे बचने की उम्मीद छोड़ दी थी।
तब बच्चे लोग मुझे गोद में उठाकर माताजी के दर्शनों के लिए ले गए। माताजी ने मुझे देखा और कहा, तुझे क्या हुआ है छोरी? ऐसा कहकर एक थपकी टांग पर, एक कंधे पर और एक पीठ पर दी।
बस तीन थपकी दी और बोली, बेटी क्या हो गया? चिंता मत कर, ठीक हो जाएगी, बिल्कुल ठीक हो जाएगी, बिल्कुल ठीक हो जाएगी, बिल्कुल ठीक हो जाएगी, तीन बार कहा। फिर बोली, तू तो जा नहीं सकती,
तेरे छोटे छोटे बच्चे हैं,
चिंता मत कर, तू ठीक हो जाएगी। माताजी के आशीर्वाद से मैं अगले ही दिन न केवल बिस्तर से उठकर खड़ी हुई बल्कि स्वयं चलकर शौचालय तक गई। मुझे चलते देखकर बच्चे चिल्लाने लगे, माँ चल मत, तू गिर जाएगी।
उन दिनों हम रितंबरा भवन में रहते थे।
मैं चल रही हूँ, सुनकर पास पड़ोस वाले सब कार्यकर्ता इकट्ठे हो गए।
सब मुझे चलते हुए देखकर हैरान थे।
जिसने भी सुना सब काम छोड़कर मुझे देखने दौड़ पड़ा।
मुझे आज भी वो दृश्य याद है जब मुझे देखने के लिए मेला जैसा लग गया था।